से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते भरियों, से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। विश्व में पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते भनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, से शिव बाबा पधारे ओ ओ।
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। बाबा की ये मुरली क्या है, क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? बाबा कहते हैं ये है ज्ञान रत्न, ज्ञान रत्न है। इन रत्नों का क्या करना है? ये ज्ञान रत्न जितने हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, उतना ही फिर ये रत्न वो सच्चे रत्न बन जाएंगे भविष्य के लिए। तो मनन भी करना है इन ज्ञान रत्नों को, चिंतन भी करना है और फिर मंथन भी करना है। तीनों में क्या अंतर है? मनन करना माना जैसे उसको रिपीट कर रहे हैं, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, वो मनन। फिर चिंतन क्या है? चिंतन अर्थात एक एक ज्ञान की पॉइंट की गहराई में जाना, ये है चिंतन। फिर मंथन क्या है? जैसे दही का मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है, तो जितना हम चिंतन करते जाएंगे उतना नई नई पॉइंट्स निकलती जाएगी। इसको हम बाबा कहते हैं मंथन कहेंगे। तो ज्ञान रत्नों का मंथन जितना करेंगे उतना मक्खन निकलेगा और अंदर की गहराई एक एक पॉइंट से मिलती जाएगी। और यही रत्न बाबा कहते हैं भविष्य में तुमको मालामाल बना देंगे, धनवान बना देंगे। केवल अपने तक नहीं रखना है, औरों को बांटना भी है। जितना बांटेंगे उतना और बढ़ेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान मुरली के महत्व को जरूर समझो। कई कहते हैं ना, हम क्या पुरुषार्थ करें, हम क्या पुरुषार्थ करें, इस पूछते रहते हैं। तो बाबा की ज्ञान मुरली जो है उसकी गहराई में जाओ और उसमें सब पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ करना है बाबा सब बताते हैं। और वो पुरुषार्थ उसी अनुसार करेंगे तो अवश्य हम बहुत ऊंच पद पाएंगे। तो आज की सारी मुरली है ही ज्ञान मंथन। तो मंथन करने से अमृत निकलेगा और यही अमृत हमें अमर बना देगा। यही मुरली है जिसको सुनकर गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती है। लेकिन ये सारा जो संगम युग का अनुभव है वो फिर श्री कृष्ण के लिए दे दिया है कि जब वो मुरली बजाता था तो गोप गोपियां अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती थी। केवल मनुष्य ही नहीं, गायें भी अनुभव करती थी, ऐसे भी बताते, वो भी नाचती थी जब मुरली की तान सुनती थी। तो बाबा कहते हैं वो काठ की मुरली की क्या बड़ी बात है, वो तो फकीर लोग भी बजाते हैं ना। कई ऐसे हैं बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छी सुर निकालते हैं तर्ज अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि वो क्या बड़ी बात है वो बांसुरी बजाना, पर ये ज्ञान मुरली है जिसका इतना महत्व है। तो हम बच्चे ये ज्ञान मुरली सुनते हैं और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 5/12/2024 है। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा, ज्ञान मंथन से अमृत निकलेगा। अब पर चिंतन करते रहेंगे, इसकी बात उसकी बात उसकी बात, तो कैसे अमृत निकलेगा? वो तो क्या निकलेगा, गंदा पानी हो उसका मंथन करो तो कीचड़ा ही निकलेगा ना, गंदे गंदे छींटे ही उड़ेंगे ना, और क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान मनन करो, आपस में भी मिलो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, और बातों में मत जाओ, उसमें तो समय श्वास संकल्प शक्ति सब व्यर्थ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो, ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न है 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर ज्ञान रत्न, अंडरलाइन है ज्ञान रत्न। अगर 21 जन्मों के लिए माला माल बनना है तो ज्ञान रत्न धारण करो, मंथन करो और बांटो, तो ये होगा भविष्य में इतना धनवान बनेंगे। तो ज्ञान रत्न, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न भविष्य के हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और रत्न ही सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला होगा। हम चाहते हैं बाबा का नाम बाला करें, तो बाबा का नाम बाला करने लिए बाबा ने आज बहुत सुंदर युक्ति बताई है। क्या है? धारण करे ज्ञान रत्न, मुख से ज्ञान रत्न निकले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला होगा। आसुरी गुण निकले तब आसुरी गुण निकल जाए तब माला माल बनेंगे। आसुरी गुण होंगे अंदर तो माला माल कहाँ बनेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता, दोनों ही नहीं है ना। जिस जो अभी बाबा ज्ञान देते हैं वो देवताओं में नहीं होगा और ना उनके वो कोई भक्ति करते हैं। ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं, दोनों ही नहीं करते। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, मुरली तेरी हाँ में है जादू खैर खुदाई, हाँ ऐसे कहते हैं, वो खुदाई जादू है इस मुरली में। गायन है ना मुरली में है जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये तो कॉमन बात है, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं ना, क्या बड़ी बात है वो, फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं, हाँ कई फिल्में दिखाते हैं, एनिमेशन फिल्में आजकल श्री कृष्ण की कितनी निकलती है, बस मुरली बजाता है, वो नशे में रहता है और सब कैसे नाचते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य, ये तो होता ही रहता है। है तो दोनों ही मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य ही है लेकिन देवी गुण है, तो देवता से मनुष्य, मनुष्य से देवता, फिर मनुष्य। बाबा कहते हैं ये तो होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा नहीं है, ये ज्ञान का वर्षा अभी मिलता है। तो सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा ये नहीं है। सतयुग में भक्ति भी होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तो मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान किसको चाहिए? जो सदगति में है उनको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान किनको चाहिए? जो दुर्गति में है। तो हम सब दुर्गति में थे, तभी बाबा कहते हैं ज्ञान हम लेते हैं। तो ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन कैसी होगी? जो ज्ञान की धारणा करते हैं उनकी चलन कैसी होगी? देवताई जैसी। अगर लड़ते झगड़ते आप उसमें तो थोड़ी कोई कहेंगे देवताई चलन है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन कैसी होगी? ज्ञान की पूरी धारणा है तो पूरे ज्ञान युक्त चलन होगी, पर अधूरी ज्ञान की धारणा है तो बाबा कहते हैं उनकी चलन भी मिक्स होती है। कभी तो इतनी अच्छी स्थिति और कभी तो देखो ओम शांति ऐसे भी कहेंगे। तो कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, हाँ ज्ञान है तो वो आसुरी चलन जो दुनिया वाले चलते हैं उस प्रकार की नहीं भी होगी, लेकिन मिक्स होगी। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, धारणा नहीं तो बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी है, धारणा नहीं तो फिर हमारे बच्चे भी कैसे कहलाएंगे? हम शिव बाबा के बच्चे हैं ये कैसे कहलाएंगे? धारणा अगर नहीं है तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे, बच्चे भी कहलाएंगे, और धारणा नहीं है तो भाई किसके बच्चे हैं? तो फिर उस बाबा कहते बाबा का भी नाम बदनाम करेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे? बच्चे बाप को नहीं जानते हैं तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? दुनिया में भगवान को तो जानते ही नहीं, तो भगवान भी उनके लिए क्या करेंगे? तो बाप तो को नहीं जानते, बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे? कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं, जानते नहीं है ना कौन है परमात्मा, तो कच्ची कच्ची गालियां देते हैं। कौन सी कच्ची गालियां देते हैं? पत्थर भीतर कण कण में, हाँ क्या नहीं बाबा के लिए कहते हैं, भगवान के लिए कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है, वास्तव में किसी को भी गाली देना खराब है, भगवान को देना तो और ही कितना बड़ा पाप चढ़ जाता है। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब वो ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है। अभी हमारे पास कई आते हैं ना संत साधु महात्माएं आते, अभी भी दिल्ली ओआरसी में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है संतों का। अब वो तो जब भाषण करेंगे या कहेंगे यही कहेंगे ना परमात्मा तो सर्वव्यापी है, पर हम बच्चे थोड़ी कहेंगे ऐसे। तो बाबा कहते हैं फिर जब वो ब्राह्मण बनते हैं तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर फिर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं और अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालते हैं ना, कितने अच्छे अच्छे भाषण करते हैं बाबा की ज्ञान मुरली से ही कितने अच्छे भाषण करते हैं। तो स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको ये ज्ञान मिलता है उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा और कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स और निकलेगी। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? कुछ तो मंथन होता ही है हर वक्त, मन तो सदा ही सोचता रहता है। तो अगर विचार सागर मंथन नहीं है ज्ञान का तो क्या मंथन होगा? आसुरी विचार मंथन होंगे जिससे किचड़ा ही निकलता है, किचड़ा ही निकलेगा ना उससे। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट्स हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, भगवान ही पढ़ाएगा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, देवताएं थोड़ी पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, अब ज्ञान धारण कर रहे हैं, जीवन में ला रहे हैं, तो अपने से क्या पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? ये अपने आप से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं। अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी तो देवता बनेंगे। आसुरी गुण भी साथ में होंगे और फिर कहेंगे हम देवता बन रहे हैं, तो कहाँ बनेंगे देवता? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, अंडरलाइन, छीछी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, कम दर्जे का है ये, ऊंच पद कभी नहीं पाएगा। तो ये कम दर्जे का है, अगर छीछी बातें मुख से निकलती है, वातावरण से झट पता पड़ जाता है। कहीं भी जाओ वहां अगर कोई नेगेटिव वातावरण है ना, सब फील होता है कि यहाँ तो बहुत नेगेटिव वातावरण है, और जहाँ बहुत पॉजिटिव वातावरण है, योग चलता रहता है, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है, लगता है बस यही बैठ जाए। और नेगेटिव वातावरण तो कहेंगे निकले यहाँ से, हाँ, जैसे शमशान घाट में जाते हैं वहाँ कितना नेगेटिव वातावरण होता है ना, रोते हैं, दुखी होते हैं, तो बाबा कहते हैं वहां पर ज्यादा टिकना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, भाई चलो हो गया अर्थी को वो अंतिम संस्कार कर लिया, हमारा काम पूरा हुआ, चलो वहां यहाँ बैठना नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ वातावरण नेगेटिव है, भारी है, वहां बैठना भी नहीं चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं कम वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तो तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रत्न ही निकले। ये लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, पूर्व जन्म में इनकी आत्माओं ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, तब ये देवता बने तो हर्षित चेहरा हुआ। मुख से ये रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे, कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वो फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। नौ रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, वो जो रत्नों की माला है उनके हाथ में या अंगूठी भी पहनते हैं, बाबा कहते हैं वो कोई सच्चे रत्न थोड़ी, मतलब भले कहेंगे सच्चे रत्न भी हो पर ज्ञान रत्न तो सच्चे रत्न है ना। तो बाबा कहते हैं नौ रत्नों की माला को हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है, ये है सच्चे हीरे, हा? जो चैतन्य रत्नों की माला। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठियां आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है, ये रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको ये माला माल बना देते हैं और बहुत धनवान बन जाते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं जिसको कोई लूट न सके, भगवान वो धन देते हैं जिसको कोई लूट न सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे, वो हीरे जवाहरात यहाँ पहनो तो कोई न कोई लूट लेगा। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल कैसी होगी, फोटो दिखाते ना, आसुरी गुण वाले की शक्ल और दैवी गुण वाले की शक्ल। तो बाबा कहते हैं आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, क्रोध की शक्ल होगी तो जैसे लाल तांबा मिसल हो जाता है, गुस्सा सारा मुंह पर आ जाता है, पूरा खून मुंह पर आ जाता है। तो क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं, और काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को तो काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हरेक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए, ये पढ़ाई है किस लिए? बहुत धन पाने के लिए, वो धनवान बनेंगे इस पढ़ाई से। तुम बच्चों का सुना हुआ है ना, अब लौकिक में भी बहुत पढ़ाई पढ़ते हैं तो कितना बड़ा उनको पोजीशन मिलता है, तो बाबा मिसाल देते हैं, तुम बच्चों का सुना हुआ है ना, क्वीन विक्टोरिया, उस समय क्वीन विक्टोरिया रानी थी इंग्लैंड की, जो क्वीन एलिजाबेथ से पहले उसकी माँ थी। तो वो उसका जो बाबा कहते वजीर था, पहले बहुत गरीब था, दीवा जलाकर पढ़ता था, इतना गरीब था, क्योंकि उस समय लाइट तो होती नहीं थी, तो बस जो कैसे दीवा जला करके वो पढ़ता था। और इतना पढ़ लिया उसने जो विक्टोरिया का वजीर बन गया, क्वीन विक्टोरिया का, दीवा जलाकर पढ़ता था। परंतु वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है, नॉलेज पर पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई न कि पैसा, पढ़ाई काम आई, पैसा तो मिट्टी में मिल जाता है ना, तो पढ़ाई काम आई न कि पैसा, पढ़ाई ही धन है, वो है हद का और ये है बेहद का धन, ये ज्ञान रत्न है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, सतयुग में कोई धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते, सतयुग में तो यहाँ की पढ़ाई से धनवान बनते, वहां तो इतने धनवान है उसके लिए कोई पढ़ाई करेंगे कोई तब पद मिलेगा तब धन मिलेगा, वो बात वहां नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहां तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार अथा धन मिलता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। क्या प्रमाण है कि बहुत धन था जब द्वापर में भी आए, जो मंदिर बनाए इतने हीरे जवाहरातों से जड़े मंदिर। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, कितना भी पढ़ ले कोई, कितना भी पद बड़ा पा ले, कितना भी उसको धन मिल जाए, लेकिन सतयुगी देवताओं जितना धन थोड़ी किसी के पास होगा। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है, नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है। अब अभी तो नाम चलो धनवान है पर उनको ज्ञान रत्न लेने की फुर्सत ही नहीं है, तो भविष्य में थोड़ी फिर धनवान बनेंगे। नाम के जो साहूकार भी हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है, अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। अब इसमें तो अहंकार आदि तो मिट जाना चाहिए, यहाँ पर कोई आए और अपना अहंकार दिखाए, बाबा कहते यहाँ अहंकार नहीं चल सकता है, अहंकार मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, आत्मा तो एक बिंदी है, क्या करेगी धन दौलत हीरे जवाहरात, हाँ बिंदी को तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है, सब धन वही रह जाता है, कोई धन अपने साथ थोड़ी ले जाते हैं शरीर छोड़ा तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है, फिर जब नए सिर से पढ़े धन कमाए तब धनवान बने, या तो फिर दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पांच कर्मों का फल है। कोई धनवान के घर जन्म लेता है तो उसके लिए वो तो गोल्डन स्पून इन माउथ, धनवान घर के में जन्म लिया, सब कुछ सोने का है तो चम्मच भी सोने का होगा, कटोरी भी सोने की होगी, सब कुछ सोने का होगा, माना इतना धनवान है। तो कहते हैं ये पांच कर्मों का फल है, जन्म लिया और सोना ही सोना। नॉलेज का दान दिया है व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, तब धनवान घर में जन्म लेता। केवल पढ़ाई की और धन बहुत कमाया और वो तो शरीर छोड़ दिया, धन वही रह गया, पर वो धन का दान किया तब उसका महत्व है। जितना दान किया है उतना ही भविष्य में चलेगा, बाकी तो कुछ नहीं चलेगा अगर रह गया यहाँ। तो बाबा कहते हैं नॉलेज का दान दिया है व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, द्वापर कलयुग में दान पुण्य करते हैं, सत्युग में नहीं किया जाता है। वहाँ क्या दान धन दान करेंगे, सब धनवान है, किसको कोई जरूरत नहीं है धन की, हर एक के पास है। तो इसीलिए दान वहाँ वो धन के दान की तो बात ही नहीं है। सत्युग में नहीं किया जाता है, सत्युग में अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे ही कर्म होते हैं। भाई कई समझते ना दान करेंगे तो हमारे अच्छे कर्म बनेंगे, पर वहाँ तो है ही अच्छे कर्म, तो दान करने से थोड़ी अच्छे कर्म केवल बनेंगे, तो उनके पास है ही अच्छे कर्मों का पुण्य। सत्युग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा क्योंकि रावण ही नहीं है। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकर्म कब बनते हैं जब विकारी कर्म करते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होते ही नहीं है, सारा मदार कर्मों पर है, मन वचन कर्म वास्तव में तीनों पर है ना, कर्म का भी आधार मन वचन है। तो स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। ये माया रावण आसुरी बनाता है, क्या करती है माया, हाँ रावण क्या करता, आसुरी बनाता है। बाप आकर सर्व गुण संपन्न बनाते हैं, राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। हम रावण वंशी है ना, पर हम राम वंशी है, तो रावण वंशी कौन है, ये विकार। तो राम वंशियों की युद्ध चलती है रावण वंशियों के साथ, राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, राम के वंशी के राम वंशी बच्चे माया रावण से हार खा लेते हैं। बाबा नाम नहीं बतलाते हैं फिर भी उम्मीद रखते हैं, अगर कोई ऐसी गलती की भी है तो बाबा कोई वो एक्सपोज नहीं करते, शो नहीं करते कि हाँ इसने ऐसे किया, बाबा फिर भी बाबा कहते हैं उम्मीद रखते हैं ये सुधर जाए। अधम ते अधम का उद्धार करना होता है, बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं, बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, रावण माया से कैसे बचो उसके लिए बाबा हर रोज युक्तियां बताते रहते हैं, फिर भी गिरते तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वो फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वो अधम पना अंदर खाता रहेगा। अब कोई ऐसा पाप कर्म किया फिर भले ज्ञान भी सुनेंगे पर वो पाप जो किया वो तो मन में खाएगा ना। तो बाबा कहते हैं वो अधम पना अंदर खाता रहेगा, जैसे कहते हैं ना खाता रहेगा, क्यों, क्योंकि अंत में भी वही याद आएगा, वही याद आएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे कहते हैं ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसी वेला में जो मरे तो फिर कहते हैं वैश्या जून वल वल उतरे, तो अंत में स्त्री याद आई माना काम वासना याद आई, समझो। तो वो उसका जन्म कैसा होगा, तो अंत काल पर भी बहुत निर्भर है, पर उसका फिर आधार जीवन के संकल्पों पर है। तो जैसे कहते हैं अंत काल जो वो सिमरे, तो उनकी बुद्धि में अधम पनाई याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब ये जानवर तो नहीं जानेंगे ना, ये ज्ञान मनुष्य आत्मा ही समझेगी ना, जानवर तो नहीं समझेंगे। तुम ही सुनते हो और समझते हो, मनुष्य तो मनुष्य ही है, इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि तो सब है ना, फिर भी मनुष्य है ना, हाँ उनको भी सब कुछ है, जैसे आज के मनुष्य के नाक कान सब कुछ है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसीलिए उन्हें देवता कहा जाता है। ये ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको ही धारणा भी होगी, जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हों को बाबा क्या टाइटल देंगे, उन्हों को बाबा टाइटल देते बुद्धू, बुद्धू विचार सागर मंथन ही नहीं करते बुद्धू। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा, जो ज्ञान सुनाते रहते हैं उनका विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, उनको आएगा बुद्धि में, उम्मीद रखी जाती है ना, अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर जरूर समझेंगे, तो भी बाबा उम्मीद छोड़ते नहीं है ना, कहेंगे जरूर आगे चलकर समझेगा। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है, थक जाते हैं तो फिर शौक भी खत्म हो जाता है ज्ञान सुनाने का। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है, चलो अधम बन भी गया और वो आता है क्लास में, तो स्नेह से बिठाएंगे ना, या कहेंगे चले जाओ तो नहीं कहेंगे ना, फिर भी चलो कहेंगे, थोड़ा आदर तो देंगे, भले वो भिखारी जाके बना भी, चले जाओ ये तो नहीं कहेंगे, हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे ये पूछना भी पड़े, क्यों नहीं आए कहेंगे ना, माया से हार खाली, वो खुद कहेगा भाई क्यों नहीं आया, माया से हार खाली। समझते भी है ज्ञान बड़ा अच्छा है, तभी तो फिर आते हैं ना, अगर अधम गति को पा लिया वह फिर कुछ सालों के बाद फिर आ जाते हैं तो कहने में तो आएगा ना कि उसने समझा कि ये ज्ञान तो बहुत ऊंचा है और ये मेरी भूल थी जो मैंने बाबा को छोड़ा, तो फिर आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना, क्योंकि बाबा कहते ये ज्ञान अविनाशी है, थोड़ा भी लिया वो बीज अविनाशी रह जाता है, वो जरूर उभरता है। तो बाबा कहते हैं स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं है, या माया से हारते हैं माया को जीतते, भक्ति मार्ग में ये हार जीत की बात ही नहीं है, ये तो नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको, क्रिश्चियन बोधी पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, हाँ बनते हैं वो पास्टर बनते हैं, फादर बनते हैं, बिशप बनते हैं, चलो वो थोड़ा उनका ऊंचा मान होता है, पर जैसे भारत में है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उस प्रकार से उनमें वो वर्ण नहीं है और धर्मों में। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, जन्म लिया ब्राह्मण के घर में तो ब्राह्मण ही कहलाता है। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अलफ को याद करना है, अलफ को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो, उनको बोलो कि अलफ अल्लाह को याद करो, अलफ को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अलफ तरफ इशारा करते हैं, हाँ सीधा ही सीधा अलफ है, अलफ बे लिखते ना तो अलफ जो होते वो एक लकीर होती है अलफ, तो अलफ बना वो लकीर, तो अलफ बना ये उंगली, अलफ तरफ उंगली दिखाते कि उसको याद करो। सीधा ही सीधा अलफ है, अलफ को एक एक भी कहा जाता है उर्दू में, अलफ माना वो जैसे एक लिखते ना एक, तो अलफ भी उनको कहते हैं। तो मुझे याद है अभी यहाँ जो अपना इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ में पीछे ए लिखा है, तो हमने किस वो जब लिख रहे थे तो मैंने कहा इंद्रप्रस्थ में ए क्यों लिखा, इंद्रप्रस्था थोड़ी है, राम है तो राम लिखते, रामा थोड़ी है, योगा थोड़ी है। तो एक विदेशी बहन कहती नहीं ए लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए माना अलफ, ए माना गॉड, तो इसीलिए ए को लिखना ही चाहिए। तो इसलिए इंग्लिश में हम लोग भारत में तो कहेंगे राम, वो कहेंगे रामा, हम कहेंगे योग, वो कहेंगे योगा, तो वो उसमें ए जरूर डालते हैं, तो ए लिखते हैं, इससे सिद्ध है कि भाई वो भगवान को याद करते हैं। उनका अच्छी बात है, ये भी उनका विचार सागर मंथन है। तो बाबा कहते हैं अलफ को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अलफ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा है अलफ, अलफ को एक भी कहा जाता है, ए भी कहेंगे ना ए, तो बाबा कहते हैं अलफ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सभी है बच्चे। तो बाप को अलफ कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, ज्ञान भी देते हैं बाबा और बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते ही नहीं है। इतनी सेवा करते हैं, इतना विश्व का मालिक बनाते, पर खुद बाबा कहते हैं उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं है, पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं है, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, पावन दुनिया में वो आकर क्या करेंगे, चलो आप ही जाए तो करेंगे क्या, वहां तो कुछ काम नहीं है भगवान का, पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना ये उनकी ड्यूटी है, वहां तो वो ड्यूटी को निभाना नहीं है, सब पावन ही है तो क्या ड्यूटी करेंगे, तो पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव, बच्चों को सालीग्राम कहा जाता है, अब दोनों की पूजा होती है, शिव की भी होती है और सालीग्राम की भी होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है, ये शिव और सालीग्राम की पूजा करते हैं इसका मतलब क्या, वो ये समझते शिव तो चलो शिव परमात्मा और सालीग्राम विष्णु का ही रूप दिखाते, इसलिए जब सालीग्राम है तो ऐसा वी दिखाते, ये वी जो है या यू जैसे करते वो विष्णु के भक्त होंगे, वो सालीग्राम पर करते हैं, और शिवलिंग होगा तो त्रिपुंड तीन लकीरें ये सीधी, और वो यू माना ये जैसे विष्णु की निशानी है लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहते हैं तो पता चल जाता है ये सालीग्राम है या शिवलिंग है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सालीग्राम कहा जाता है, दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की, देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, हाँ जो मंडप बनाते हैं देवियों के देखने जैसे होते हैं। कलकत्ता में हम गए थे एक बार जब नवरात्रि थी, इतने सुंदर सुंदर मंडप बनाते हैं बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं, वो तो मिट्टी का लिंग बनाया तोड़ा, देवियों का ऐसे नहीं करते, पर तो शिव का लिंग बनाते हैं, जब यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग बनाया और फिर पूजा की फिर तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती है, अभी मिट्टी का बना लेंगे फटाफट हो जाता है, बनाने में मेहनत नहीं लगती है, पर देवियों को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, उनकी यानी शिव बाबा की पूजा में भी मेहनत नहीं लगती है, क्या मेहनत लगेगी, बस आप जल का अभिषेक करो, फिर दूध का करो, फिर दही का करो, 16 प्रकार का अभिषेक करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर सामग्री चाहिए, बस ऐसे अभिषेक करो बस, बाकी और मेहनत तो लगती नहीं है, बनाने में भी मेहनत नहीं लगती है, उनकी यानी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती है, मुफ्त में मिलता है, वो जो पत्थर भी होते हैं वो मुफ्त में मिलते हैं, शालिग्राम भी मुफ्त में मिलते हैं, पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। इसीलिए कई कहते हैं ना, जो शिवलिंग जो कहते हैं स्वयंभू, यानी किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयंभू है, अपने आप निकला। तो इसीलिए पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते हैं, अंगुष्ठाकार या अंगूठे मिसल बना देते हैं, तो अंडाकार भी कहते हैं। जैसे अंडा गोल गोल होता तो अंडाकार, अंगुष्ठाकार, ओवल शेप, तो पूरा अंडाकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है, जो ब्रह्म तत्व में रहती है इसको ब्रह्मांड कहते हैं। वैसे तो ब्रह्मांड वो यूनिवर्स को कहते हैं, बाबा कहते हैं ब्रह्मांड तो परम धाम है, जहाँ आत्मा है अंडे मिसल ज्योति बिंदु, परम ज्योति बिंदु आत्मा रहती है, जो ब्रह्म तत्व में रहती है। अंडे मिसल आत्मा जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। हम लोग भी जो तीन लोक दिखाते हैं ना, तो उसमें साकार लोक, आकार लोक, निराकार लोक, लेकिन दिखाते कैसे, एक अंडे मिसल अंडाकार। अब होगा तो पूरा ये होगा ना, राउंड ऐसे ही होगा ना, लेकिन हम तो क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, तो वो जैसे साकार आकार निराकार ये तीन दुनियाएं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो कहते भी अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, सब बाबा ही कहते हैं ना, विश्वनाथ बाबा कहेंगे, वैजनाथ बाबा, हाँ जहाँ जहाँ बाबा कहेंगे। तो शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं, दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है, तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको एडॉप्ट किया है तो ये शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की तो सब औलाद है ये, फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वो एडॉप्टेड नहीं है, वो एडॉप्शन नहीं है, शिव बाबा के बच्चे आत्माएं एडॉप्शन नहीं है, परंतु जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, इनको एडॉप्ट करते हैं, फिर हम इनके एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। ईश्वर के तो सभी औलाद हैं, फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वो एडॉप्शन नहीं, शिव बाबा के बच्चे वो एडॉप्शन नहीं। क्या आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है, नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को एडॉप्ट किया, आत्माओं को नहीं किया है। तुम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं तो अनादि अविनाशी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर अपना अपना पाठ मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये पाठ ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है, उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले ये ध्यान रखना है। हर्षित रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां वर्षे में दी है। याद की शक्ति का अर्थ है, याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लग जाए। यह है याद की शक्ति। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। संगम युग पर डबल ताजधारी किसको कहेंगे? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। तो अभी भी डबल ताजधारी और फिर भविष्य में भी डबल ताजधारी। और आज का अव्यक्त इशारा, 5 तारीख है आज। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वो सदा संतुष्ट होगा, है ना। संतुष्ट मणि बनने के लिए जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वो सदा संतुष्ट होगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः आता है। कह करके कराना नहीं पड़ता है, स्वतः करेंगे। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। सेवाधारी का विशेष लक्ष्य संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डबल फॉरेनर्स, प्लीज पे अटेंशन फॉर योर प्रोग्राम टुडे, 10th